ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
வைராக் ந ஹோனே சே வேதாந்த மே ஜோ ஜீவன் முக்தி கா ரஸ் ஹை உஸ் பே பர்தா பட் ஜாதா ஹை. கியோகி ஹம் சிந்தன் மே மனன் மே ஸ்ரவண் மே யே கஹதே ஹை கி ப்ரஹ்ம சத்யம் ஜகன் மித்யா ஔர் வ்யவஹார் மே வோ ஜகன் மித்யாத்வ கி அனுபூதி ஹோதி நஹீ. கியோகி ஜோ விவாத் ஹை, தனாவ் ஹை, சிந்தா ஹை, வோ பகவான் கோ யா பரமாத்மா கோ யா ப்ரஹ்ம கோ லேகே நஹீ, வோ வ்யவஹார் கோ லேகே ஹை, ஷரீர் கோ லேகே யா ஷரீர் கே சம்பந்தியோ கோ லேகே. तो अगर वेदांत के रास्ते पर चलते हुए भी जीवन मुक्ति का रस नहीं आता तो भी अभी लक्ष्य स्थिर नहीं है. तो गुरु जी का जो वाक्य है, एक लक्ष्य निश्चित हो, लक्ष्य अच्छा हो, तो लक्ष्य के लिए यात्रा प्रारंभ करने से ही आनंद का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता है, वहीं से प्रारंभ हो जाता है. पर हमारे गुरुदेव के जीवन में आप सब लोगों ने देखा ही है, हम लोगों को तो वही श्लोक हमेशा याद आता है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन. ओए ब्रज गोप, ग्वाल बालों का बहुत भाग्य है. ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं भागवत में, ग्वाल बालों का भाग्य की सराहना करते हैं ब्रह्मा जी. क्यों? ब्रह्मा जी ने क्या देखा था? बोले भगवान कृष्ण सबके साथ बैठ करके मंडलाकार वन भोज लीला, आप लोगों ने छाग लीला यहां संपन्न किया पूज्य गुरु स्वर्णानंद जी महाराज के सत्संग में, वही वन भोज लीला में ये श्लोक है. जो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को, बोले इन ब्रज ग्वाल बालों का क्या भाग्य है, सारे संसार का मालिक परमात्मा इनके मध्य में बैठ करके भोजन कर रहा है, और केवल भोजन ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे का जूठा उठा के भी खा रहे. भगवान कृष्ण जिसके पत्तल में अच्छा भोजन लगे उसका उठा के खा जा. हम लोग प्रेम से भोग लगाते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं, तो भी ठाकुर जी आते हैं कि नहीं आते हो तो व्यक्तिगत भक्त को ही पता है, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं. लेकिन वहां तो छीन के खाते, ग्वाल बालों के पत्तल से उठा के खा जाते, गोपियों का माखन चुरा के खा जाते हैं. इसलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा, तद भूरि भाग्य में जन्म किमप्यटव्याम, परमात्मा अगर अगला जन्म मेरा होने वाला है तो अब ब्रह्मा मत बनाना. बोले फिर क्या बनना है? बोले इस ब्रज में जन्म देना, ब्रज में कोई लता बना देना, वृक्ष बना देना, जिससे इन ग्वाल बालों के चरणों की धूली पड़े तो मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम प्रकट हो और जीवन आनंदित हो जाए. तो वो जीवन हम लोगों ने महाराज जी का, महाराज जी का सानिध्य जिन लोगों को प्राप्त हुआ है, बालक हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, या बहुत लोग हैं जिन्होंने महाराज जी का दर्शन किया है, श्रवण किया है, वो साक्षात श्री कृष्ण की लीलाएं उनके जीवन में दिखती थी. एक सामान्य व्यक्ति के साथ सामान्य जैसे लगते थे, और विद्वानों के मध्य में बोले तो काशी के पंडित, अमृत महोत्सव में पाठक जी आपने देखा, काशी के पंडित भी चकराते थे कि कहां से बोल रहे. एक बार कवि सम्मेलन था वृंदावन में, पाठक जी जानते हैं वो निम्बार्क विद्यालय है, वहां कवि सम्मेलन था. झा जी वहां के प्राचार्य थे, छह विषय के आचार्य हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कृत थे. तो वो महाराज जी को ले गए, बड़ा आग्रह था महाराज जी का, बड़ा उनसे प्रेम था. महाराज जी बोले हम क्या करेंगे कवि सम्मेलन में? बोले नहीं महाराज, अध्यक्षता तो आप ही को करनी, कवि सम्मेलन अब क्या करें. झा जी का आग्रह, इतना बड़े विद्वान षट दर्शनाचार्य गुरु जी गए. अब आज के कवियों में प्राय स्वाभाविक हास्य और व्यंग की कविता होती, खूब हंसाते हैं व्यंग करके, कभी किसी पे कटाक्ष करके. अब महाराज जी का जब अध्यक्षीय भाषण प्रारंभ होना था तो स्वाभाविक था लोगों मन में जिज्ञासा थी, यहाँ पे महाराज जी क्या बोले, कोई वेदांत भक्ति की चर्चा तो यहाँ प्रासंगिक नहीं होगी. महाराज जी बोले देखो यहाँ जितने कवि बैठे हैं सब जवान है, और अध्यक्ष एक बूढ़े को बना दिया है. बोले मैं जब बोलूंगा तो लोग यही सोचेंगे क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया. माने आप कल्पना कर सकते हैं कि जो महाराज जी के मुख से इतनी बड़ी बड़ी वेद वाणियों की व्याख्याएं निकलती थी वो महाराज जी कवि सम्मेलन में ये पंक्ति गाते हैं, सारे कवि लोटपोट हो गए, उनको तो कल्पना भी थी नहीं थी कि महाराज जी ये भी बोल सकते। तो वो महाराज जी का जीवन हम लोगों ने देखा है, पूर्ण कृष्ण रूप और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप ही उनका जीवन था, शांतनु बिहारी के महाराज उनके कृपा का रूप में, इसलिए महाराज जी का पूर्व नाम वही था। और उनका पूर्ण जीवन आप अगर भागवत उठा के देखें, श्री कृष्ण के जितने गुण दिखाई देते हैं लीलाओं में, सब महाराज जी में एक एक गुण करके दिखाई देते थे। तो महाराज ऐसे महापुरुष जिन्होंने दर्शन किए, स्पर्श की, वो धन्य है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, जिन्होंने ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया, स्पर्श किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया और आज भी वो वांग में विग्रह के रूप में, ग्रंथों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में सीडी ऑडियो वीडियो उपलब्ध है। और वैसे अगर बहुत भाव हो तो अनेक भक्तों का अनुभव है कि आज भी स्वप्न इत्यादि में आज भी दर्शन देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, खाली दर्शन नहीं देते। तो ये तो सिद्ध महापुरुष हैं जिनको हम कारक पुरुष बोलते हैं, जो हमेशा रहते हैं, प्रभु की इच्छा से आते हैं, जब समय उनका कार्य पूरा हो जाता फिर प्रभु के पास रहते हैं हमेशा, उनका प्राकट्य कोई कर्म के अधीन नहीं होता है, वो प्रभु की प्रेरणा से होता है, प्रभु को अपनी भक्ति के विस्तार के लिए ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं, वो साक्षात ईश्वर रूप होते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में मैं अपने भाव पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज जो हमारे प्रवचन में उठ के उधर चले गए थे, अच्छी बात नहीं है। इनका झगड़ा बहुत पुराना हमारा, जब हम लोग अध्ययन करते थे तब से साथ में पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज से हम लोग वेदांत इत्यादि का अध्ययन किए, किसी के प्रवचन में नहीं उठे, आप लोगों ने देखा होगा यहां से उठ के वहां बैठ वॉकआउट किया, बोल रहे हैं सामने सीधे, आप ये देखिए सबकी सभा में बोले बोले वॉकआउट किया आपके प्रवचन। तो प्रत्येक बोधन जी महाराज कह रहे हैं कि डालमिया जी अपने भाव तो प्रकट तो करने ही अभी करे बात तो भाव व्यक्त करेंगे, फिर स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज और फिर अध्यक्ष ये भाषण होगा, आप लोग आनंद लें क्योंकि अब आनंद ही आनंद है। हमारे स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी हमको पता लगा कि वो नाम कहते हमारा नहीं लिया जाए, अब वो नाम आप समझ लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मना कर
दुख होता है।
डालमिया जी आदर
अर्चनीय वंदनीय सभी संत वृंद के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं तो संतों को ही सुनने के लिए आया था लेकिन उनका आदेश हुआ कि मैं भी दो शब्द बोलूं। स्वामी जी महाराज का जब देह विलय होने वाला था, लगभग उसके 15 दिन पहले मैं स्वामी जी के दर्शन करने आनंद वृंद आश्रम गया था। स्वामी जी बगीचे में एक तख्त पर बैठे हुए थे, उनको डायबिटीज की बीमारी पहले से ही थी। आशीर्वाद तो सबको देते ही थे, उस वक्त मैं प्रेमपुरी से नहीं जुड़ा था लेकिन प्रेमपुरी में स्वामी जी महाराज का दर्शन किया था, विपुल में भी बहुत बार गया था दर्शन करने और वहां पर भी जाता था रहता था। तो मैंने महाराज जी से आशीर्वाद मांगा, उन्होंने मुझसे एक ही आशीर्वाद दिया कि रामायण का पाठ रोज किया करो। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करो और भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करो, वो जीवन में सुख देता रहा। खैर सुख दुख की बातें तो अलग है एक संत का जो आशीर्वाद है ना, सबसे ऊंची बात वही। मुझे काम के अर्थ में कुछ दिन दिल्ली भी ठहरना पड़ा और वहां से मैं जयपुर होता हुआ जब बंबई आया तब लौटने पर उसको 15 दिन हो गए थे उस बात को, तब मुझे मालूम पड़ा कि महाराज श्री का देव बेला होगा। दुख होना स्वाभाविक है सबको, लेकिन ये तो ईश्वर की लीला है तो उसके लिए तो हमको नमन करना ही पड़ता। तब इनका संतों का आदेश हुआ इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक संस्मरण मेरा सुनाया, धन्यवाद।
डालमिया जी ने अपने भाव प्रकट किए महाराज जी के चरणों में। अब हमारे परम श्रद्धे स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज हम लोगों को बड़े मधुर मधुर संस्मरण, मधुर मधुर वाणी में, रसमय वाणी में, अब आप समझ गए होंगे, श्रवण कराएंगे नाम लिए बिना। जैसे भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया गया ना, लेकिन सब कुछ कहा गया है, ऐसे वो नाम नहीं लेंगे लेकिन कहेंगे जरूर। स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज,
ओम बीजस्यांतरिबांकुरो जगदिदं प्राग् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम् मायापीप प्रिजुम्बयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये निधये सर्वविद्यानां विषजे पवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम तच्छंयोरा प्रुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। संस्कृत में जितने भी शब्द है वो मूल उसका होता है धातु, धातु से शब्द का अमुक प्रकार के संस्कृत के नियम अनुसार उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। तो जन्म शब्द है वो जनीर प्रादुर्भावे इस धातु से बनता है जन्म, आविर्भाव प्रादुर्भाव इसका अर्थ होता है जो है विद्यमान वो कुछ कारण से वर्तमान बनता है। जैसे इस काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, मंथन करने पर वो वर्तमान हो जाता है, इसी का नाम है आविर्भाव प्रादुर्भाव। देखो वैज्ञानिकों के कई जमाने पहले यह बात इन लोग को मालूम थी कि कोई नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। यू कांट क्रिएट अउंट्स ऑफ मैटर, यू कांट डिस्ट्रॉय अउंट्स ऑफ मैटर, टोटली इम्पॉसिबल। एक तिनका भर भी चीज नई पैदा नहीं हो सकती है, बदल बदल के आविर्भाव होता जाता है। ऐसे ये जन्म जो है वो भागवत की भाषा में, वेदांत की भाषा में स्थूल शरीर जो अन्न से बना हुआ है, अन्ना जायते अन्न नैव वर्तते, उस अन्नमय कोष में इस सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना है उसका उसमें प्रवेश होना और उसके साथ तादात्म्यपन प्राप्त करना अविद्यावशात, इसी का नाम है जन्म। इसके लिए उपनिषदों में बहुत सी चर्चा है, ये जीव कब स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, बादलों के साथ पानी में नीचे जाके अन्न से आकर है कैसे आता है, बहुत चर्चा है। हमने ये तय नहीं किया कि ये शरीर मेरा है एक दिन, जैसे आज से एक घर मेरा है ओनरशिप में ले लिया, नहीं, ये जन्म से ही यह शरीर मैं हूं ऐसा तादात्म्य अपन सब में है। नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है, ये सहज प्राप्त है। और इस तादात्म्यपन का भंग होना टूटना इसी की संज्ञा बनती है मृत्यु हो। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जितना प्रारब्ध है प्राक आरब्ध इतना समय तक संयोग रहता है, फिर उसका मृत्यु अलग हो जाना होता है, उसी का नाम है मृत्यु हो। अब आप देखिए सभी प्राणियों का जन्म होता है और भगवान श्याम सुंदर ने इस तादात्यपन जीव के लिए एक बात गीता में कही, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। ध्रुवम ये बात अचल है, जो पैदा हुआ हुआ अपने को मानता है वो अवश्य एक दिन ध्रुव क्या है उसका ये शरीर छूट जाएगा, डिस्पोजेबल, दिस बॉडी डिस्पोजेबल, टूटेगा। अब इसमें एक फर्क है, जो पैदा होता है वो मरेगा और उसके लिए उपनिषद ने बात बताई, मृत्यु से मृत्यु आप्नोति या इह नानेव पश्यति। नाना मीन्स द्वैत को जो सत्य मानता है अपने से पृथक मानता है उसको भय होता है। देखो ये बात बहुत लोग बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, द्वितीयाधि भयं भवति, द्वैत से भय होता है, ये द्वैत से भय नहीं होता है, द्वैत मुझसे पृथक है ये भ्रांति से भय होता है। अपनी परछाई भी अगर अपने को लगे ये अलग कोई चीज है, परछाई किसकी है, भय होगा। इसी प्रकार से द्वैत भय का हेतु नहीं है, द्वैत की भिन्नता जो है अपने से पृथकता वही भय का हेतु है। मृत्यु से मृत्यु ये नहीं कहते जन्म से जन्म प्राप्त होता है, मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होता है। मृत्यु का नाम किसी को सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। आपनोति यह इह अस्मिन जन्मनि नाना इव पश्यति, सत्य रूप से मानता है। ये सबकी कथा है, जायस्व म्रियस्व, जन्मता है मरता है, ऐसा उपनिषद के मंत्र है। और गति भी बता दी, उत्तरायण गति दक्षिणायन गति, परवश अवश होकर ये दोनों गतियों को प्राप्त हो करता है। ये सब शास्त्र चर्चा है, इसमें प्रमाण शास्त्र है। जीव की गति किसी को दिखती नहीं है और न दिखे वही अच्छा है, नहीं तो पकड़ के वापिस ले आएगा उसको तो, वो जाए ऐसे ही अच्छा है। कोई जानता नहीं ये विषय शास्त्र का है, पर एक बात है जो अपने को पैदा हुआ मानता है उस अवश्य मरेगा। अब आप देखिए कि इस जन्म और बीच में जरा व्याधि आदिदेवम अधिभूतम आध्यात्मिकम दुखम ये परवश जीव को हमेशा भोगना ही पड़ता है। दुख दोषानुदर्शनम, अब एक बात देखिए जिसके लिए प्रेमपुरी जी है, मान ये सत्संग का स्थान है जहां हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री हर रोज आते थे और स्वरूपानंद जी ने इतना बढ़िया बताया कि एक एक कण में महाराज जी है, और एक बात उनकी आपको बहुत अच्छी लगी, जो महाराज जी के बहुत करीब है उनको महाराज श्री के लिए बोलना बहुत मुश्किल भी है। अपने से पृथक देखे तब बोले ना, इतनी बातें जिसका अंत नहीं हो सकता है। तो आप देखिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहां एक चर्चा की जाती है, वो है नित्य अध्यात्म विद्या मंदिर है, आत्मनि इति अध्यात्म, इस शरीर के भीतर और सबके सब शरीरों के भीतर, एक शरीर के नहीं, देह सर्व देह में जो एक प्रत्यग आत्मा है, एक पूर्ण आत्मा है, पुरो उषति वसति इति पुरुषः, पूर्णत्वात् पुरुषः। ये पुरुष शब्द संस्कृत में बहुत बढ़िया है, पुरुषः पुरुषः दो बार कह दो महावाक्य हो जाएगा। इस शरीर में जो प्रत्येक आत्मा है वही पूर्ण ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञम च पिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो इसके स्वरूप का जब बोध होता है कि न जायते अयम आत्मा न कदाचित जायते, ये आत्मा जो साक्षी है, साक्षी का जो स्वरूप है वो कालगत कभी नहीं होता है, काल में उसका आविर्भाव नहीं होता है। क्यों? नित्यत्वात् अजह ध्रुवम, सब हेतु दूसरी पंगे, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण है, तस्मात् न म्रियते, आत्मा न जायते तस्मात् वाट न म्रियते। किसी ने कह दिया हां वंद्या पुत्र भी न जायते तस्मात् न म्रियते, नहीं, आयम आत्मा प्रत्येक आत्मा अंगुली निर्देशेन, ये जो आपका आत्मा है अंगुली निर्देश करके कहते हैं वो आत्मा है, सत अभाव न विद्यते, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो है उसका कभी नाश नहीं होता है। क्यों? नित्य है, काल का आधार है, काल का प्रकाशक है, और काल में न आता है न जाता है, वो सबका आत्मा यही है। पर सब ये बात जानते हैं नहीं है, जिन्होंने इस बात का चिंतन किया प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण के द्वारा, संप्रदाय के अनुसार, गुरुमुख से, सबकी आवश्यकता है, गुरु भी संप्रदायवित होना चाहिए। आजकल एक नया चला है, मैं स्वयंभू आचार्य हूं, माने मेरा कोई गुरु नहीं है और मुझे गुरु बनाओ, है ना, और दूसरे किसी गुरु के पास मत जाना, है ना, और मैं ही लास्ट गुरु हूं और कोई अकुले आने वाला नहीं है, एंड लेटेस्ट भी मैं ही हूं, ये सब है ना। हम लोग में भी थोड़ा होना चाहिए ना, ये खालिस्तान नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए अंदर। ये सब देखेंगे आप लोग आस्था चैनल देखिए, सब प्रकार की दाढ़ी देखेगी, उसमें ये भी आएगा, लंबी सब दाढ़ी देखेगा, तो आई एम सॉरी टू से ऑल दैट। तो जायत ये जो है गुरु के पास संप्रदायविद, आत्मा नित्य है, अज है, जन्म मृत्यु रहते, ये सब बात करने से कुछ नहीं होता है। एक एक शब्द का जो अर्थ है उसका उद्घाटन करना, माने अनफोल्डिंग द वर्ड विदाउट क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट, मेकिंग देम सी द मीनिंग, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। संप्रदाय जो है चला है शंकराचार्य से भी पहले, गौड़पादाचार्य से पहले, ये नारायण से संप्रदाय भी साथ में आ रहा है, कैसे शास्त्र के अर्थ को समझना, गूढ़ा अर्थ को आत्मसात करना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया, पर सत्यम अनंत है, अनंत सत्य है, ये जो सामानाधिकरण्य है इसको समझने के लिए संप्रदाय चाहिए, असंप्रदाय वित्तो मूर्खवत उपेक्षणीयम, जो संप्रदाय को नहीं जानता है उसको मूर्ख की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, ऐसे हमारे प्रातस्मरणीय महाराज जी संप्रदाय वित्त, आप देखिए अमृत महोत्सव में पाठक जी सबका नाम लेते थे, उनकी वाणी यहीं से प्रारूपिक, कौन कौन से संत से क्या क्या सीखा, जिन्होंने कुछ भी दिया। आज का जो पुस्तक है पावन प्रसंग में भी आप देखिए, महाराज जी सारग्राही थे और सबका सम्मान करते थे, और खास करके वो कहते थे जो शास्त्र है वो महात्मा या संप्रदाय भेद नहीं होगा तो क्या समझ में आएगा। इसलिए इसके द्वारा अपने आपा का जो स्वरूप जन्म मृत्यु रहित इसका बोध होना, यही सचमुच में आनंद जयंती है। और इसलिए आप देखिए, एक बात और देखिए, हम लोग सबके जन्म दिन आता है, आजकल तो अलर्ट होता है सब कंप्यूटर में, तो लोग तत्काल मैसेज भेज देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, सबकी बर्थडे डाल देते हैं और अपने आप मैसेज आ जाता है, ये सब मॉडर्न है, और फोन भी आएगा और बधाई हो भी होगी, केक भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे, हमको भी आनंद भी होता है कि चलो आज हमारा जन्मदिन है। पर जन्मदिन के समय सचमुच में अंदर थोड़ा दुख भी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंटिंग डाउन, है ना। अगर 85 इयर्स हो गए तो कितना बाकी रहा है? अगर 100 साल जिए तो 15। काउंटिंग डाउन शुरू हो गया, चलो खुशी होती जिंदा है। हम लोग जब जिंदा है तब तो जन्मोत्सव मनाते और अलोक मनाते हैं, पर एक बार शरीर पूरा हो गया तो पुण्यतिथि है, जन्मोत्सव कोई नहीं मनाता है। आज देखिए एक चमत्कार दूसरा, महाराज श्री का 100 साल तो हमने मनाया और एक साल और आगे लग गए, 101 वी आर सेलिब्रेटिंग। बहुत बड़ी बात है। वाय क्यों? क्योंकि जन्म भी सार्थक हो गया, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से स्वयं मुक्त है ये जाना, बने नहीं, ये गड़बड़ मत करना, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए तो फिर थोड़ी देर में बद्ध हो जाएंगे, है? जो पैदा होता है वो नाशवान होता है, ये सब बोलने में गड़बड़ है। अभी महाराज जी मुक्त हो गए तो पहले थोड़े दिन मुक्त हो गए, फिर क्या हो जाएगा? फिर बद्ध। प्रेमपुरी में दो घंटे सत्संग में मुक्त, फिर घर जाने पे बद्ध नहीं परम बद्ध ऐसा हो जाता है। पत्नी पहला पूछेंगे देर से क्यों आए, चालू हो जाएगा वहां से। स्वयं मुक्त स्वयं तीर्णा परां तारयति, जो स्वयं तर गए हैं जन्म मृत्यु से पर है ये बात जान गए हैं, और हम लोग सबको भी यही सिखाते रहे। आजकल में ये हो रहा है स्वयं तीर्णा परां तारयति, नहीं स्वयं कंफ्यूज परां कंफ्यूजयति, ये लोग ऐसे हैं। महाराज श्री का जिन्होंने दर्शन किया श्रवण किया, और स्वरूपानंद जी महाराज की तरह जिन्होंने सेवा की, वो सब कोई जन्म मृत्यु में भी आ नहीं सकते, मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, क्योंकि उनकी जो पवित्र वाणी है, अभी स्वरूपानंद जी मुझे मिले उन्होंने यही कहा कि महाराज जी उनके एक एक शब्द मन में गूंजते रहते हैं। महाराज श्री की वाणी की एक और विशेषता थी, आप उनके सामने बैठ जाओ और उनको ध्यान से सुनो, मैंने जिंदगी भर यही किया, तो उनके जो शब्द थे वो मन में बिल्कुल ऐसे बैठ जाते थे कभी निकल नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो वाणी है वो अपना प्रमाण है, वो अपना काम करेगी, और इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सबको मुक्त करके ही रहेगी। इसलिए हम रोज भी सुनते हैं और सुनना चाहिए। और ये वांग्मय अवतार स्वामी गिरीशान जी ने बताया, ये पुस्तक सचमुच वांग्मय अवतार है। मैंने अमेरिका में भी कितने लोगों को ये पुस्तक सीडी सब दिया, बस मेरा काम बढ़ जाता है, किसी को एक पुस्तक दिया इसका मतलब है उनको पूरा सेट चाहिए, पूरी सीडी चाहिए, और फिर मेरे क्लास में भी आना बंद कर देते हैं क्योंकि हम सब मिल गए महाराज जी हमको। अभी आपकी भी जरूरत नहीं है। इतना यल्लापात न परो लाभ है, ऐसा लाभ है। तो महाराज श्री की ये कृपा, अभी टाइम तो है पर 5 मिनट में पूरा करूंगा। महाराज जी को अभी अध्यक्ष, प्राय अध्यक्ष को टाइम नहीं मिलता, आज पहली बार मिल रहा है, मैं अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता क्योंकि अध्यक्ष को 3 मिनट मिलता है ज्यादा से ज्यादा, और लोग को बहुत कुछ कहना होता है। आज बहुत अच्छा है गिरीश राज जी, है ना, तो बढ़िया चलता है। पहले कह देंगे, बाद में कह देंगे, काल की मर्यादा बता देंगे, सब ठीक है। इज वेरी कैपेबल पर्सन।